Blessed Devya, Om Namah Siddhevya, Om Namah Siddhevya, Om Shuddhatmane Namah, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Savasahunam, Siddhadadhatamala, Visuddha Buddhi Eladha Savatha, Tihuvana Sirase Haraya, Pasiyantu Bhadaraya Savve, Tihuvana Bhavana Pasariya, Pachakava Boha Kirana Parivedo, Uyo Vyanathavano, Arahanta Divayaro Jayavu, Tirayana Khaggani Hai, Nuttariya Moha Sena Sirani Vaho, Airiya Rau Pasivau, Parivaliya Bhaviya Jiyalo, Annanandayare, Anorapare Bhamanta Bhaviyanam, Ujjo Jehikao, Pasiyantu Saya Uvachaya, Duhativati Savinadiya, Tihuvana Bhaviyana Sutturayena, Parithaviyadhamma Pava, Suajalavana Payanena, Sandhariya Silahara, Uttariya Chirapamada Dussilabhara, Sahu Jayantu Sauve, Sivasuhapaha Santhiyahu Nigaliyabhaya. यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है, जो षटकंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। यह नौवीं पुस्तक जो चतुर्थ खंड है, कृति अनुयोग द्वार, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 29 पर आ गए हैं। पहला सूत्र नमो जिनानम और दूसरा सूत्र नमो ओहि जिनानम, उस अवधि ज्ञान के संबंध में यहाँ चर्चा चल रही है। अवधि ज्ञान में हमने देखा था कि देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ऐसे तीन भेद होते हैं। देशावधि के भी बहुत सारे प्रकार हैं, परमावधि के भी बहुत सारे हैं, और सर्वावधि नाम का सर्वोत्कृष्ट एक प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। उसमें से यहाँ देशावधि के भेदों की चर्चा चल रही है। पहले में पहले उसके विषयभूत कितना जानता है, उस अपेक्षा से उसके भेद करेंगे। कितने द्रव्य तक को जानता है, जब द्रव्य तक यानी उसे नीचे से नीचे, उसकी लोअर लिमिट कितनी है। ऊपर के बड़े बड़े स्कंदों को तो जानेंगे, तो द्रव्य, फिर क्षेत्र, काल और भाव, ऐसे ही इसको जानता है तो उसकी बात अभी यहाँ आ रही है। तो जघन्य अवधि की बात हमने देखी है, तो जघन्य अवधि ज्ञानी का क्षेत्र, ये द्रव्य कितना है, तो विसृषोपचय सहित औदारिक परमाणुओं का जो संग्रह संचय है, उसको लोक से भाग देंगे तो एक भाग जितना खंड है उसका, उतने तक के सूक्ष्म द्रव्य को जानते हैं, उससे छोटे वाले स्कंदों को नहीं जानते। ये द्रव्य की बात है। क्षेत्र कितना जानते हैं, कम से कम जो देशावधि, जघन्य देशावधि है, कितने क्षेत्र तक को जानता है, तो कितने मैक्सिमम क्षेत्र तक को जानता है, उसके बाहर के नहीं जानता। तो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त तक जो उसकी जो जघन्य अवगाहना है, वहाँ तक के क्षेत्र को जानता है। काल में आवली के असंख्यात वे भाग, अतीत और अनागत काल को जानता है। काल यानी उसमें होने वाले उस द्रव्य का जो कुछ अवस्थाएं हैं, उसको जानता है। भाव में वर्तमान पर्यायों को जानता है, तो कितने ही पर्यायों को जानता है, सभी अनंत पर्यायों को नहीं जानते, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय असंख्यात हो सकता है, अनंत नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा उनके अनंत नहीं ख्याल में आते। तो इस तरह से हमने उसकी लोअर लिमिट देखी थी। अब दूसरा जो विकल्प है अवधिक ज्ञान का, वो कितना है? तो द्रव्य कितना जानते हैं उसकी अपेक्षा से हम नहीं इतना स्कंद को जानते हैं। दूसरे नंबर का अवधिक ज्ञान कौन से स्कंद तक को जानते हैं नीचे, तो जो पहले वाला स्कंद में जो हमने परमाणुओं की संख्या देखी थी उसको विशिष्ट एक ध्रुव संख्या से भाग देना है, जिसको ध्रुवहार कहते हैं, उसको उस संख्या से भाग देंगे तो जो स्कंद का आएगा प्रमाण वहां तक दूसरे नंबर का अवधि ज्ञान जानता है। पहले नंबर का अवधि ज्ञान तो उस विशिष्ट हमने जिसको ए कहा था वहां तक ही जानता था, दूसरे नंबर का उससे भी छोटे स्कंद को जानेगा। ऐसे तीसरा चौथा पांचवा निकालने के लिए उसी ध्रुव संख्या से भाग देना पड़ता है। ऐसे असंख्यात जब चले जाएंगे द्रव्य के विकल्प, यानी विशिष्ट द्रव्य कितने द्रव्य को जानता है उसकी अपेक्षा से अवधि ज्ञान के इतने सारे भेद विकल्प हो जाते हैं, उसके पश्चात क्षेत्र में वृद्धि होती है। यानी असंख्यात द्रव्यों के भेद की अपेक्षा से देखेंगे तो क्षेत्र उतना का उतना रहता है, फिर क्षेत्र में भी वृद्धि होगी तो क्षेत्र का एक यानी जगह अवधि ज्ञान का एक भेद, दूसरा भेद, तीसरा भेद, चौथा भेद, उसमें भी असंख्या चले जाएंगे तब काल में एक बढ़ेगा, उसमें अगला वाला भेद होगा काल की अपेक्षा, उसको भी हम यहाँ देख रहे हैं। 29 पेज पर नीचे का पैराग्राफ बड़ा फिर पढ़ते हैं, उसके ऊपर के जो 12 नंबर की यहाँ गाथा प्रस्तुत की है उसमें यह बताया था, हमने देखा था ना द्रव्य की वृद्धि तो होती जाती है तब जाकर क्षेत्र की वृद्धि होती है, क्षेत्र की अनेक बार होती है तब काल की होती है, और भाव की और द्रव्य की समान बढ़ती है। जहां द्रव्य का दूसरा विकल्प है वहां भाव का भी दूसरा विकल्प है। द्रव्य में क्या होता है अधिक अधिक सूक्ष्म को जानने लगता है, और भाव में असंख्यात गुणे पर्यायों को जानने लगता है, उसमें बढ़ोतरी होगी ना। द्रव्य में तो परमाणु की संख्या लेने वो तो सूक्ष्म की ओर बढ़ेगा और सूक्ष्म को जानेगा, और भाव में और अधिक अधिक पर्यायों को जानेगा। तो द्रव्य और भाव का दूसरा विकल्प समान है, तीसरा समान है, चौथा समान है, उसी विकल्प में द्रव्य घटता चला जाता है और भाव बढ़ता चला जाता है। तो द्रव्य और भाव की अपेक्षा देशावधि के जो भेद है वो सेम हो गए, परंतु क्षेत्र का बढ़ने का और काल का बढ़ने का ऐसा नियम नहीं है। तो वहां यह बताया था जब काल बढ़ता है आगे वाला तो उस समय क्षेत्र भी बढ़ेगा, द्रव्य का भी अगला वाला भी भेद होगा, भाव का भी अगला वाला भेद होगा, परंतु जब क्षेत्र बढ़ता है तो द्रव्य तो बढ़ेगा भाव भी बढ़ेगा, परंतु काल बढ़ेगा भी या नहीं भी बढ़ेगा, कल हमने देखा था उसको स्लेट पर बताया था ना कल। हाँ, अब ये हम नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाँ, जो कोई अवधि ज्ञान है उसका जघन्य में जघन्य क्षेत्र इतना है, उतने तक तो जानेगा, उससे बाहर को नहीं जानेगा, उतने क्षेत्र की उतनी मर्यादा है। मैक्सिमम लिमिट कितनी जानने की, आप मिनिमम की ओर देख रहे हैं, उसके क्षेत्र में अधिक से अधिक कहां तक जानेगा उसकी बात है। हाँ। देखो, पश्चात बहुरूपित खंडों को छोड़कर एक रूप धरी द्वितीय विकल्प रूप द्रव्य को अवस्थित भागहार के प्रत्येक रूप के ऊपर समखंड कर देने पर उनमें एक खंड तृतीय विकल्प रूप द्रव्य होता है। अपनी भाषा में कहना है तो पहले हमने पहला जो विकल्प था उसको ध्रुव संख्या से भाग दिया तो दूसरा विकल्प आया था, जैसे हमने लाख को 5 का भाग दिया तो 20,000 आए थे। तो दूसरे विकल्प को अभी उसी ध्रुव संख्या से भाग देना तो तृतीय विकल्प वाले द्रव्य की संख्या आएगी, ये यहां बता रहे। उसके लिए जो हमने विरलन किया था, 5 का विरलन किया था, पहले लाख थे 5 का विरलन किया तो एक एक के ऊपर 20,000 आए थे, तो एक के ऊपर जो 20 है उसको एक रूप धरित कहना, तो 4 के ऊपर 20 चौक 80,000 को छोड़ दिया और 20,000 को रखा, फिर 5 को विरलन किया और एक एक के ऊपर समान खंड रूप से दिया तो 4,000 आ गए। तो 4,000 ये तृतीय विकल्प है। चतुर्थ विकल्प करने के लिए क्या देखेंगे, 4,000 को फिर 5 से भाग देंगे, इस तरह से अगला अगला विकल्प जो है उसी ध्रुव संख्या से भाग देने पर आता है। यही बात उन्होंने विरलन की भाषा में बताई है, इसलिए हमको जरा वो कठिन लगती है। ये द्रव्य की अपेक्षा से विकल्प हुआ, विकल्प है देशावधि का भेद। अब भाव विकल्प कैसा निकालना, तो भाव विकल्प जो पहले वाला था उसको असंख्यात से गुणा करना तो द्वितीय नंबर का आया, उसको और असंख्यात से गुणा करेंगे तो तीसरे नंबर का, फिर और असंख्यात से चौथे नंबर का। तो यहाँ लिखते हैं द्वितीय भाव विकल्प को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर तृतीय भाव विकल्प होता है। जब ये द्रव्य का और भाव का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे चलते रहते हैं तो क्षेत्र भी उतना ही रहता है और काल भी उतना ही रहता है, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती। शेष खंडों को छोड़ करके एक रूप धरित तृतीय विकल्प रूप द्रव्य को अवस्थित विरलना से विरलित कर, अवस्थित विरलना यानी वो ध्रुव संख्या जो भागहार है उसको विरलन करते हैं और संख्या को उसमें समान रूप से देते हैं, दूसरी भाषा में उस भागहार से भाग देते हैं। वही बात आने वाली है। समखंड कर देने पर चतुर्थ विकल्प रूप द्रव्य होता है। ये तो चतुर्थ विकल्प रूप द्रव्य का विकल्प हुआ और भाव का विकल्प निकालने के लिए क्या करेंगे, असंख्यात से गुणा करेंगे। तृतीय भाव विकल्प को तत्प्रायोग्य, तत्प्रायोग्य शब्द हर बार लिया है। भावों में जो कुछ असंख्यात गुणा होता है तो जो यथा योग्य है उससे गुणा करना, अलग अलग होगा। यहाँ वो ध्रुव संख्या ऐसा नहीं कहा कहीं पर, इसलिए तत्प्रायोग्य असंख्यात से गुणा करना ऐसा लिखा है। तत्प्रायोग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर चतुर्थ भाव विकल्प होता है। इस प्रकार अभ्रांत होकर यानी निश्चिंत रूप से पंचम छठा सातवां आदि विकल्प जानना चाहिए। तो उसके लिए क्या कहा, कहाँ तक कैसे करने विकल्प, जब क्षेत्र और काल उतना ही रहता है तो द्रव्य और भाव के विकल्प कितने होंगे, तो कहते हैं अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र। द्रव्य और भाव विकल्पों को उत्पन्न करना चाहिए। तत्पश्चात जघन्य क्षेत्र के ऊपर एक आकाश प्रदेश बढ़ाना चाहिए, तब जाकर एक आकाश प्रदेश बढ़ेगा। पहले जो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त तक की जघन्य अवघाना थी उसमें एक प्रदेश बढ़ाना। इस प्रकार बढ़ाने पर क्षेत्र का द्वितीय विकल्प होता है, परंतु काल जघन्य ही रहता है। यानी क्षेत्र का और एक प्रदेश बढ़ाने के लिए द्रव्य के और अनेक विकल्प हो जाएंगे, फिर क्षेत्र में और एक आकाश प्रदेश बढ़ेगा। सेम पश्चात वहां के द्रव्य विकल्प को, द्रव्य विकल्प में तो हर बार वो चल ही रहा है, अवस्थित भागहार के ऊपर समखंड करके देने पर वहां का द्रव्य विकल्प, यानी मान लेते हो दसवें नंबर का है तो भाग देते देते जो कुछ संख्या आई है उसको फिर उसी विरलना में समखंड करके देना है। अपनी भाषा में जो वहां द्रव्य की संख्या आई है उसको उसी ध्रुव भागहार से भाग देना है। विरलना में समखंड करके देना कहो या उसका भाग दे दो कहो, एक ही बात है। उसमें एक खंड उपरिम द्रव्य विकल्प होता है। उपरिम किसे कहना, आगे वाला, आगे वाला है ने? मान लेते दसवें नंबर की हम बात की और उसको भाग दिया तो आगे ग्यारहवें नंबर वाले की संख्या आएगी। वहां के भाव विकल्प को तत्प्रायोग्य असंख्यात रूपों से गुणा करने पर अवधि का उपरिम भाव विकल्प होता है। जैसे हमने 10 से 11वें नंबर का द्रव्य विकल्प निकाला, वैसे 10 नंबर का जो भाव विकल्प था उसको यथा योग्य असंख्यात से गुणा करेंगे तो 11वें नंबर का भाव विकल्प होगा। द्रव्य और भाव एक साथ उसके जो आगे आगे का विकल्प चलता है, द्रव्य सूक्ष्मता की ओर चला जाता है उसका स्कंध, और भावों में पर्यायों के असंख्यात गुणा बढ़ते चला जाता है। तत्प्रायोग्य जो जिनेन्द्र भगवान ने जाना है वो तत्प्रायोग्य कहा, यथा योग्य जो कुछ है। इस प्रकार पुनः पुनः करके, बार बार ऐसा करके अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्प उत्पन्न कराना चाहिए। ये दो बार हुए अंगुल के असंख्यातवे भाग। इस प्रकार उक्त विकल्पों को उत्पन्न कराने पर द्वितीय क्षेत्र विकल्प के ऊपर एक आकाश प्रदेश को बढ़ाना चाहिए, तब क्षेत्र का तृतीय विकल्प होता है। यानी क्षेत्र का पहला जो हमने देखा सूक्ष्म निगोध लब्धि पर्याप्त की जघन्य अवगाहना, उतनी ही रहते हुए द्रव्य के और भाव के विकल्प कितने होते, तो अंगुल के असंख्यातवे भाग इतने होते। फिर उसमें एक आकाश प्रदेश बढ़ा दो, यानी क्षेत्र एक प्रदेश से बढ़ा, तो उसमें और अंगुल के असंख्यातवे भाग उतने द्रव्य और भाव के विकल्प चले जाएंगे। फिर इस क्षेत्र में और एक प्रदेश की वृद्धि होगी। इस तरह से क्षेत्र के एक एक विकल्प में द्रव्य और भाव के विकल्प कितने हैं, तो अंगुल के असंख्यातवे भाग जितने हैं। तो क्षेत्र का तृतीय विकल्प होता है काल जघन्य ही रहता है। अभी ऐसे हर बार एक एक प्रदेश बढ़ते हुए काल तो उतना का उतना ही रहा, आवली का असंख्यातवा भाग। इस प्रकार धीरे धीरे भ्रांति से रहित निराकुल समचित्त होकर श्रोताओं को संबोधित करने वाला व्याख्यानाचार्य अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्पों को उत्पन्न करा के क्षेत्र के चतुर्थ पंचम छठे एवं सातवें आदि अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र तक अवधि के क्षेत्र विकल्पों को उत्पन्न करा के, अभी क्या कहना चाहते हैं जो समझाने वाले आचार्य, वो क्या करेंगे? कहेंगे जब द्रव्य के अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र विकल्प जाते हैं तब क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि हुई, फिर और अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र और विकल्प चले जाए तो दो प्रदेश की वृद्धि हुई, फिर और चले जाए तो तीसरा, ऐसे क्षेत्र का तीसरा भेद, क्षेत्र का चौथा भेद, क्षेत्र का पांचवा भेद, निश्चिंत रूप से निराकुल होकर। तो इस तरह से क्षेत्र में एक 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 प्रदेश की वृद्धि होती चली जाएगी, तब क्षेत्र में भी कितने विकल्प करने, ऐसे अंगुल के असंख्यात विभाग, ख्याल है? और एक एक प्रदेश की वृद्धि के लिए द्रव्य और भाव के विकल्प कितने, अंगुल के असंख्यात विभाग। तो तब जाके अवधि के क्षेत्र विकल्पों को उत्पन्न करा के पश्चात जघन्य काल के ऊपर एक समय बढ़ावे, तब जाके एक समय अधिक पूर्व और पश्चात का जानने की उनकी कैपेसिटी है। दूसरे नंबर का काल का विकल्प देशावधि के ही भेद कहलाएंगे। जब दूसरे नंबर का काल का विकल्प आता है तो क्षेत्र के विकल्प अंगुल के असंख्यातवे भाग स्क्वेयर हो गए, नहीं अंगुल के असंख्यातवे भाग रेस टू अंगुल के असंख्यातवे भाग हो गए, स्क्वेयर भी नहीं। और तब उल्टा कहा मैंने, देखो हम मान लेते हैं ना चार बार होते हैं तब एक बार क्षेत्र की होती है। हम ऐसा मानेंगे द्रव्य और भाव के विकल्प चार बार होते हैं तब जाके क्षेत्र की एक बार वृद्धि होती है, और क्षेत्र का जब चार बार होगा तब काल का एक बार वृद्धि होती है। तो काल के एक समय वृद्धि होने के लिए क्षेत्र के विकल्प चार बार हो गए, और द्रव्य के चार इंटू चार ये 16 हो जाएगी। यानी जब काल में एक की वृद्धि होती है अगले विकल्प की, तो द्रव्य में क्षेत्र में कितने बार हुआ, चार बार, और द्रव्य में चार इंटू चार 16 बार। अब यहां का गणित क्या है, काल में एक समय की वृद्धि हुई तो क्षेत्र के विकल्प कितने हुए, अंगुल के असंख्यात विभाग, और फिर द्रव्य और भाव के कितने हो गए, अंगुल का असंख्यातवा गुणा अंगुल का असंख्यातवा, वो प्रतरंगुल का असंख्यातवा हो जाएगा। अभी नीचे से तीसरी लाइन पहले पैराग्राफ में, फिर से भी अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र द्रव्य और भाव के विकल्पों के बीच जाने पर क्षेत्र में एक आकाश प्रदेश बढ़ाना चाहिए, इस क्रम से अंगुल के अंगुल को हुआ है, अंगुल के असंख्यात भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर काल में एक समय बढ़ाकर काल का तृतीय विकल्प उत्पन्न कराना चाहिए। अब ये ख्याल में है ना, कैसे बढ़ता है काल? शंका, यहां शंकाकार कहता है कि अंगुल के असंख्यात भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर काल में एक समय बढ़ता है, यह घटित नहीं होता, ऐसे शंकाकार की शंका है। उसके लिए वो कारण बता रहा है शंकाकार ही, क्योंकि इस प्रकार बढ़ाने पर देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं उत्पन्न हो सकता। देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है पता है आपको? हाँ मंजू भाई, हाँ कितना है? हाँ पूरा लोक, लोक लोक, वो भरत क्षेत्र जो देखा था ना हमने, वो कांडक सातवा ऐसा कुछ देखा था, निकालो ये 19 कांडक देखे थे हमने भरत क्षेत्र को, कितने अष्टम कांडक में देखा था, पेज नंबर 25 पर, ये सातवें नंबर की गाथा में आया था। भरत क्षेत्र को जब जानता है तो काल तो हो जाता है 15 दिन। तो इसका कहना है कि यदि इसी तरह से क्षेत्र को एक एक प्रदेश से बढ़ता जाए, अंगुल का असंख्यात भाग, अंगुल का असंख्यात भाग, तो देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र नहीं उत्पन्न हो सकता, और अपने उत्कृष्ट काल से असंख्यात गुणा काल उत्पन्न होगा, यानी वो लोक तक जाएगा तो काल असंख्यात गुणा ऐसा होगा, यानी सब डिस प्रोपोर्शन, ये इमेजिन कर रहा है ना अभी, उसका समाधान भी आएगा। वह इस प्रकार से वही शंकाकार ही बता रहा है कैसे नहीं होगा, कैसे क्या होगा। देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक है, ये तो सही बात है जो शंकाकार को भी पता है। नहीं, सर्वावधि और देशावधि का नहीं, यहाँ देशावधि की बात चल रही है। सर्वावधि में तो असंख्यात लोक क्षेत्र हो जाता है, वहां प्रश्न आता है ना, लोक तो एक ही है और लोक में ही पुद्गल है, तो असंख्यात लोक को कैसे जानेंगे अवधि ज्ञानी, उनमें शक्ति इतनी है, बाहर रूपी पदार्थ ने तो क्या करे, परंतु होते भी तो इतने को जानते, इतनी उनकी कैपेसिटी, क्षेत्र उतना है उनका। देश, यहाँ एक केवल देशावधि की बात है, ये जो उत्कृष्ट क्षेत्र की बात है वो देशावधि की बात चल रही, देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र लोक है, पूरे लोक के पदार्थों को, रूपी पदार्थों को जानेंगे, और उत्कृष्ट काल एक समय कम पल्ले है, काल कितना है पल्ले में एक समय कम, इतना आगे का और पीछे का वो जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक समय के यदि अंगुल के असंख्यात भाग मात्र क्षेत्र विकल्प प्राप्त होते हैं, अब ये त्रैराशिक करना चाहता है शंकाकार, यहां त्रैराशिक क्या करेगा देखो, हम मान लेते हैं कि नहीं, यहां क्या करेंगे, उत्कृष्ट काल कितना है पल्ले में एक समय कम, और जघन्य में काल कितना है आवली का असंख्यात भाग, अभी यहां एक समय कम वाली बात है, उसको हम ये पमनस एक लिखते हैं ना, यहां ये उत्कृष्ट काल है और ये जघन्य काल है, पहले मैं समझाऊंगी फिर पढ़ना। तो देखो देखो, आवली के लिए दो लिखते हैं, दो लिखते हैं, दो इस आवली का वो सूचक चिन्ह है उसका, और ये जो ऐसे इंग्लिश स्मॉल एस जैसा लेटर है ना, वो असंख्यात की साइन है, और हम बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं भागी भागाकार बताने के लिए, वैसे यहाँ निखाली उसके नीचे लिख देते हैं, तो उसका अर्थ होता है असंख्यातवा भाग। अब हम इसको भूल जाते हैं, मान लेते हैं कि जघन्य काल हमने 5 समय से शुरू किया था और उत्कृष्ट काल 100 समय तक जानने लगता है, तो काल के विकल्प कितने हुए, काल के भेद कितने हुए, पांच वाला, छह वाला, सात वाला, आठ वाला, नौ वाला, ऐसे दस, सौ तक। तो सौ माइनस पांच प्लस वन तो 96 हुए। तो 96 अलग अलग समय, ये काल की अपेक्षा अवधि ज्ञान के भेद है जानने के। कोई पांच को जान रहे, कोई छह को, कोई सात को, आठ को, नौ को, दस को, सौ तक के, ये काल की अपेक्षा भेद हो गए। और हम मान लेते कि हर एक 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 समय के लिए चार चार की वृद्धि हमने देखी थी। तो क्षेत्र एक समय के लिए इतना क्षेत्र बढ़ता है, तो ये 96 के लिए कितना क्षेत्र बढ़ेगा? उतने ही क्षेत्र मैक्सिमम आएगा कि नहीं? वही अभी यही इसको पढ़ेंगे हम। शंकाकार की शंका क्या चल रही है, कहां से चल रही है, उसकी ये बात है। देखो यहां कहते, देखो ऐसी स्थिति में, दूसरी लाइन 31 पेज पर दूसरी लाइन चल रही है अपनी। एक समय के यदि अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र क्षेत्र विकल्प प्राप्त होते हैं, तो जैसे हमने चार विकल्प समझ लिए, एक समय बढ़ता है तब क्षेत्र के चार विकल्प होते हैं, हमने समझा ना। तो एक समय के लिए चार विकल्प होते हैं, तो 96 में कितने हो गए? तो 96 को चार से गुणा करेंगे। वैसे भी ये त्रैराशिक लिखने वाले हैं। तो अभी हमको क्या करना है, उत्कृष्ट में से जघन्य को माइनस करना और एक समय मिलाना, बराबर है ना। हमने 100 में से 5 को माइनस किया, 95 आ गया, 95 आ गए, उसमें एक मिलाया तो 96 विकल्प हुए थे। वैसे ही अभी उत्कृष्ट कितना है, पल्य माइनस एक समय, आप लिखना अपने कहीं, पल्य माइनस एक समय, उसमें से क्या घटाना है, आवली का संख्यात्वा भाग, और उसमें एक समय मिलाना है, बराबर। ये लिखा है बराबर है ना, पल्ले माइनस एक प्लस, ये प्लस नहीं, माइनस आवली का संख्यात्वा भाग प्लस एक समय, क्योंकि हमको जघन्य भी समझना है और उत्कृष्ट भी, दोनों को पकड़ना है, इसलिए। तो ये माइनस वन है, प्लस वन चला जाएगा, तो संख्या कितनी आएगी, आवली के असंख्यात्वा भाग कम पल्य, यानी पल्य में से आवली का असंख्यात्वा भाग घटा दो, इतने काल की अपेक्षा विकल्प आएगी, या उतने समय है, ऐसा हम समझेंगे। तो एक समय के लिए कितना क्षेत्र विकल्प कितने होते हैं, काल का एक समय है वहां क्षेत्र के विकल्प कितने होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था अंगुल के असंख्यात्वे भाग। तो अभी ये जो संख्या हमने यहाँ निकाली, पल्य माइनस आवली का असंख्यात्वा भाग, उसके लिए कितने हो गए, त्रैराशिक क्या लिखना है उसको समझना है, उसका उत्तर नहीं सोचेंगे तो भी चलेगा। त्रैराशिक कैसा लिखेंगे, एक समय के लिए अंगुल का असंख्यात्वा भाग इतने क्षेत्र विकल्प होते हैं, तो टोटल हमने काल समयों के जितने भेद निकाले ना अभी, उसके लिए कितना होगा, देखो इसको पढ़ते हैं। देखो दूसरी लाइन से फिर पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में एक समय के यदि अंगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र क्षेत्र विकल्प प्राप्त होते हैं, तो आवली के असंख्यात्वे भाग से कम पल्य में, ये कहां से निकला समझ में आया ना, ये जो अभी हमने यहां लिखे थे काल की अपेक्षा से भेद, पल्य माइनस एक माइनस आवली का असंख्यात्वा भाग प्लस एक, तो माइनस एक और प्लस एक वो बाद हो गए, तो फाइनल रिजल्ट क्या है, यहां जो लिखा है तीसरी लाइन में, आवली के असंख्यात्वे भाग से कंपल्य, ये क्या होते हैं सारे, काल के विकल्प, यानी उतने समय हुए ना, एक एक समय बढ़ते हुए इतने विकल्प हुए, उसमें कितने क्षेत्र विकल्प प्राप्त होंगे, ये शंकाकार ने ये त्रैराशिक लिखकर बताया है। इस प्रकार इच्छा राशि से गुणित फल राशि में, देखो इसको अभी हम वो पहले वाला गणित देखेंगे, एक समय में चार क्षेत्र विकल्प होते हैं तो 96 में कितने हो गए, तो इसमें इच्छा राशि कौन सी और प्रमाण राशि कौन सी और फल राशि कौन सी, ये इच्छा राशि, ये फल राशि और ये प्रमाण राशि। तो इच्छा राशि से गुणित फल राशि में प्रमाण राशि का भाग देने पर, हम त्रैराशिक में ऐसे ही करते हैं ना, अभी 96 गुणा 4 डिवाइडेड भागीले 1 भाग देंगे उसका। तो इच्छा राशि से फल राशि को गुणा करना और प्रमाण राशि से भाग देना, तो क्या होगा, अपना लब्ध राशि अपने को आ गई। 96 गुणा 4 करना पड़ेगा। वैसे वहां अपने गणित में क्या किया हमने, एक समय में अंगुल के असंख्यातवे भाग इतने क्षेत्र विकल्प होते हैं, तो पल्य माइनस आवली का असंख्यातवा भाग इतने समय में कितने क्षेत्र विकल्प होंगे, तो कहते हैं ऐसा करने पर, भाग देने पर असंख्यात। हाँ देखो, अपने ऑर्डिनरी में हम समझना है, एक समय में 4 विकल्प होते हैं तो 96 में कितने हो गए, तो 96 को इच्छा राशि कहेंगे, क्योंकि इसके संबंध में हमको फल चाहिए, ये इच्छा राशि हुई। पहले फल बताया था एक में 4, तो ये 4 फल राशि कहलाएगी और इसका भाग देना ये प्रमाण राशि है। तो अभी यहाँ 4 के बदले में हम क्या लिखेंगे, अंगुल का असंख्यात्वा भाग। तो कहते यहाँ पर हमने क्या लिखा, पल्य माइनस आवली का असंख्यात्वा भाग, तो इसको इसको गुणा करेंगे और एक का भाग देंगे, तो वो कहते हैं इसका उत्तर असंख्यात घनांगुल ही उत्पन्न होता है, न कि उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र लोक। पल्य को इसको ये असंख्यात से अंगुल के असंख्यात भाग से गुणा करेंगे तो लोक की संख्या तो नहीं आएगी, क्योंकि पल्य माइनस ये जो कोई संख्या ना, पल्य जो संख्या है वो अंगुल के असंख्यात भाग वाली संख्या है। जितने बार आपस में गुणा करने पर हमने देखा था, हाँ पल्ले आता है उतने ही आगे स्थान जाकर अंगुल आता है, पल्ले गुणा पल्ले गुणा पल्ले गुणा पल्ले असंख्यात बार करो तो जाके अंगुल आता है, तो वो अंगुल का असंख्यात भाग ही है, दिस इटसेल्फ अंगुल का असंख्यात भाग है। फिर उसको उसका गुणा करेंगे तो भी कितना होगा, असंख्यात घनांगुल आएंगे, ऐसे कहते हैं। इतनी बात है ना, यानी वो लोक इतनी संख्या नहीं हो सकती, एक शंकाकार की ये शंका है, ये हमको गणित भूल जाओ यहाँ से। देखो पल्य इटसेल्फ अंगुल का असंख्यात भाग है, पल्य संख्या कितनी है, अंगुल तो बहुत आगे जाके आता है द्विरूप वर्ग धारा में, तो पल्य ये छोटी संख्या है, अंगुल ये बहुत बड़ी संख्या है ना। तो देख दे अंगुल के कितने होता है, असंख्यात घनांगुल उत्पन्न होते न कि उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र लोक। यहां तक समझे, ये अभी शंका ही चल रही है। अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर यदि काल का एक समय बढ़ता है तो, अभी उल्टे उल्टा बता रहे, यानी क्षेत्र उत्कृष्ट सिद्ध नहीं होता, ये उसने सिद्ध किया शंका कारण, उसको अपोज करना है ना। अभी उल्टा बता रहे कि क्षेत्र में इतनी वृद्धि होती है तब जाके काल एक समय बढ़ता है। अब कहेगा काल भी वो पल्ले वाला काल भी सिद्ध नहीं होगा, क्यों, जब काल के क्या कहते हैं क्षेत्र के, क्षेत्र अंगुल के असंख्यात वे भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर यदि काल का एक समय बढ़ता है, अपना गणित ये था ना, यदि क्षेत्र में 4 की वृद्धि होती है, 4 बार क्षेत्र विकल्प 4 होते हैं तो समय एक बढ़ेगा। अभी उल्टा कर रहे, तो अंगुल के असंख्यातवे भाग से हीन लोक में कितनी समय वृद्धि होगी। अब ये उसने क्यों किया, लोक में से अंगुल का असंख्यात भाग हीन क्यों किया? विनोद भाई आपको पता है? समय नहीं यहाँ अभी हम उल्टा त्रैराशिक कर रहे। पहले क्या किया था, एक समय के लिए चार क्षेत्र लिए थे, अब उल्टा ले रहे। जब चार है तो एक समय की वृद्धि होती है, तो अभी हम पूरे क्षेत्र के विकल्प यहाँ ले लेंगे। क्षेत्र के विकल्प कैसे लेना, उत्कृष्ट क्षेत्र माइनस जघन्य क्षेत्र प्लस एक। उत्कृष्ट क्षेत्र कितना हमें मालूम है, लोक, और जघन्य क्षेत्र सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त तक की जघन्य उगाना, वो कितनी है, अंगुल का असंख्यात भाग है। तो इसमें से अंगुल का असंख्यात भाग घटाया, प्लस एक किया। उस प्लस एक को भूल भी जाओ तो क्या करेंगे हम, यह लिखा है जो नीचे से छठी लाइन में, अंगुल के असंख्यातवे भाग से हीन लोक में कितनी समय वृद्धि होगी। एक समय में यदि चार की वृद्धि होती है क्षेत्र में, तब एक समय बढ़ता है। दूसरी भाषा में अंगुल का असंख्यातवा भाग क्षेत्र के विकल्प बीत जाने पर काल में एक समय आगे वाला विकल्प होता है, एक समय बढ़ता है। तो लोक माइनस अंगुल का असंख्यात भाग, इतने जो हमने देखा ना जघन्य उसकी जो है, तो उसके लिए काल कितनी वृद्धि होगी। दोनों तरफ से त्रैराशिक लिखकर वो ये सिद्ध करना चाहता है, आप जो कहते हैं वो बराबर नहीं है। कौन से? हाँ, घनांगुल का असंख्यात। अंगुल जब लिखते हैं तो जहाँ घनांगुल है वहाँ घनांगुल ही समझना है, वो शॉर्ट में अंगुल भी लिखते हैं, हमें समझना है ये सुच्चंगुल नहीं घनांगुल है। हा? तो यहाँ लिखा है ना, ये क्यों लिखा है, अंगुल का असंख्यात तो भाग से हीन लोक, हमें इतना समझना है, उत्कृष्ट क्षेत्र माइनस जघन्य क्षेत्र, इसलिए क्षेत्र के सभी विकल्प आएंगे उसमें। कितने समय वृद्धि होगी, इस प्रकार फल राशि से गुणित इच्छा राशि को यदि प्रमाण राशि से अपवर्तित किया जाए, अपवर्तित यानी भाग दिया जाए, जैसे ऊपर हमने त्रैराशिक देखा वैसे यहाँ पर है, तो लोक का असंख्यात्वा भाग आता है, न कि देशावधि का उत्कृष्ट काल समय कम्पल्य। देखो ये लोक और कभी पल्य और कभी ऐसी बात आती है ना, तो हम कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तो लोक कहो या पल्य कहो, वहां तो संख्या को बताने वाला माप है, उपमा मान कहते उसको। अभी हमने ये त्रैराशिक लिखा, क्या अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र क्षेत्र विकल्प बीत जाने पर काल में एक समय की वृद्धि होती है, तो लोक माइनस वो घनांगुल का असंख्यातवे भाग में कितनी होगी। अब क्या करेंगे, इसको एक से गुणा करेंगे और वो अंगुल के असंख्यातवे भाग से भाग देंगे, बराबर है ना। हाँ, तो उसकी संख्या कितनी आती है, देखो लोक का असंख्यात भाग आता है, असंख्यात लोक कैसे आएंगे, लोक में से पहले ये हमने घनांगुल को माइनस किया था, मान लेते हैं ना घनांगुल को माइनस किया, कुछ नहीं माइनस किया, ऐसा भी अगर हम लेंगे पूरे लोक के भी अंगुल के असंख्यात भाग से भाग देंगे, उसका अर्थ क्या है, लोक का असंख्यात भाग आया ना, काल को, ये काल को बता रहे, यहाँ प्रदेश को नहीं गिनना है, उतने समय आए। अभी लोक बढ़ाए के पल्ले बढ़ाए, और हमने उत्कृष्ट काल कितना देखा था, पल्ले में एक समय कम। देखो पल्ले के असंख्यात बार वर्ग का वर्ग करो तो अंगुल आता है, अंगुल तो कितना छोटा है, लोक कितना बड़ा है। अब अंगुल को असंख्यात बार वर्ग 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 करते जाओ, घन जगत श्रेणी वगैरह आएगी, वो भी उसके दूसरे इसमें आते, घन द्विरूप घन धारा में आते हैं, और फिर घना घन धारा में वो लोक आता है, यानी बहुत बड़ा प्रमाण है वो। यदि आप कहते वो गणित के अनुसार जाएंगे तो यहाँ काल का प्रमाण बहुत बड़ा हो जाएगा। और हमने कितना देखा, पल्ले माइनस एक समय इतना ही है काल। शंका करके शंका ख्याल में है ना, फिर उसका उत्तर समझ में आने वाला है।
इन्होंने जो बोला ना,
हाँ,
असंख्यात लोक आता है,
हाँ,
तो पल्ले डिवाइडेड बाय अंगुल का संख्या का भाग,
यहाँ पल्ले है ही नहीं, यहाँ लोक है, यहाँ पल्ले है ही नहीं है। यहाँ लोक माइनस घनांगुल का असंख्यात्व भाग था। हाँ, लोक रखा तो लोक को हम अंगुल के असंख्यात्व भाग से भाग देंगे, पल्ले से। हाँ,
तो लोक डिवाइडेड बाय असंख्यात अंगुल मल्टीप्लाइड बाय असंख्यात्व भाग ऊपर आ गया ना।
नहीं नहीं, वो अंगुल का असंख्यात्व भाग इटसेल्फ ही छोटी संख्या है। हाँ, वो विशिष्ट असंख्या थी, वो असंख्यात है। अभी उसके बदले असंख्यात्व भाग है ना, उसके बदले हम असंख्यात लिखो वहां, तो लोक का असंख्यात्व भाग आया। तो उसे क्या सिद्ध करना है कि दोनों प्रकार से आप कहो तो ये सिद्ध नहीं होता है। काल और क्षेत्र का जो प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है वो आपके अनुसार ये सिद्ध नहीं होता, ये शंकाकार की शंका है। अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो नीचे से अभी तीसरी लाइन में आए, इसलिए आवली के असंख्यात्व भाग से हीन समय कम पल्य का, समय कम पल्य ये अवधि का उत्कृष्ट काल है और आवली का असंख्यात्व भाग ये जगन्य काल है। तो कहते हैं आवली के असंख्यात्व भाग से हीन समय कम पल्य का जघन्य अवधि क्षेत्र से रहित लोक में भाग देने पर क्या कहने पड़ते हैं? दूसरी भाषा में क्या कहना चाहते हैं, किसका भाग देना है? काल के विकल्पों से क्षेत्र के विकल्पों को भाग देने पर, ये इतना ही कहना चाहते हैं। भागाकार के नीचे काल के विकल्प लिखेंगे हम और ऊपर क्षेत्र के विकल्प। नहीं देखो, काल के विकल्प कितने हैं? उत्कृष्ट माइनस जगन्य। उत्कृष्ट कितना है? समय कम पल्य। तो उसमें से क्या माइनस करना है? आवली का असंख्यात्व भाग। अब यहां पढ़ना, आवली के असंख्यात्व भाग से हीन समय कम पल्य। ये पूरा जो लिखा है ना यहां पर ही, ये क्या हो गए सारे? काल के विकल्प हुए। ये काल के विकल्प हुए ना। अभी उसका किसमें भाग देना है तो आगे लिखा है क्षेत्र के विकल्पों को। तो क्षेत्र के विकल्प कितने हैं? उत्कृष्ट माइनस जघन्य। तो वहां भी लिखते हैं जघन्य अवधि क्षेत्र से रहित लोक में भाग देने पर। जघन्य अवधि क्षेत्र के लिए वो पूरा ही घनांगुल का संख्यात्व भाग इतना नहीं लिखा उन्होंने, इतना ही लिख दिया कि जघन्य अवधि क्षेत्र से रहित लोक में भाग देने पर। तो जघन्य अवधि क्षेत्र से रहित लोक का अर्थ क्या है? क्षेत्र के विकल्प। यानी उन्होंने क्या किया, क्षेत्र के विकल्पों को काल के विकल्पों से भाग दिया। हमने देखा था ना, क्षेत्र के चार विकल्प बन जाते तब काल का एक विकल्प होता है। तो जितने क्षेत्र के विकल्प होंगे उसको हम उसको चार से भाग देंगे, अपने समझने के लिए कल्पना के गणित में क्या होगा, लोक का असंख्यात्व भाग आता है। इतने क्षेत्र विकल्पों के बीतने पर काल में एक समय वृद्धि होना चाहिए। यानी उसने अपने तरीके से क्या लिखा, वो क्या कहता है, मैं क्या करूंगा, क्षेत्र के विकल्पों को ऊपर रखूंगा, काल के विकल्पों को भाग दे, उससे भाग दे। इतना होने पर संख्या क्या आती है? लोक का असंख्यात्व भाग आती है। यानी क्षेत्र के लोक के असंख्यात्व भाग विकल्प जाने पर काल में एक समय की वृद्धि होनी चाहिए थी, परंतु आप तो बताते अंगुल के असंख्यात भाग क्षेत्र के विकल्पों के बीच जाने पर काल में एक समय की वृद्धि होती है, इसलिए आपने जो प्रोपोर्शन बताया वो बराबर नहीं है। ये इतना सारा लंबा चौड़ा गणित करके क्या समझाना चाहते हैं? हाँ, अंगुल का असंख्यात भाग नहीं आता, लोक का असंख्यात भाग आता है, ख्याल है ना? इतने क्षेत्र विकल्पों के बीतने पर काल में एक समय वृद्धि होना चाहिए, अन्यथा पूर्वोक्त दोषों का प्रसंग आवेगा। यानी दोनों प्रकार के उसने बताए। ये सारा झमेला क्यों सिद्ध किया? आप जो प्रपोर्शन बता रहे वो ठीक नहीं है, उसका समाधान करते हैं। यह घटित नहीं होता, शंकाकार की जो शंका है वो उचित नहीं है, क्योंकि एकांततः ऐसा स्वीकार करने पर, यानी पूर्ण एकांतता है ने बस एक ही इतने ही एक ही इसी अपेक्षा से देखने पर वर्गणा के गाथा सूत्रों में कहे हुए क्षेत्रों की अनुत्पत्ति का प्रसंग आवेगा। वर्गणा के गाथा सूत्रों में हमने देखा था, जब इतने क्षेत्र को जानता है तो उसका काल इतना है, जब इतने क्षेत्र को जानता है तब इतना काल है, ये सूत्रों में ही बताया है। अभी हमने याद किया ना, भरत क्षेत्र को जानता है उसका काल 15 दिन का है, आठवें कांडक की बात आई थी वहां पर, तो वह इस प्रकार से है। काल की अपेक्षा आवली के असंख्य सॉरी काल की अपेक्षा आवली के संख्यात्वे भाग को जानने वाला क्षेत्र से अंगुल के संख्यात्वे भाग को जानता है। ये उन्होंने वहां कांडक इसीलिए बताए थे कि विशिष्ट स्टेज पर तो काल इतना है और क्षेत्र इतना है। सामान्य से तो बता दिया इतने क्षेत्र के विकल्प बीत जाने पर काल एक एक समय बढ़ता है, तो फिक्स प्रपोर्शन बताया, परंतु आगे चलकर बताए कहीं कहीं अध्रुव वृद्धि भी होती है। ये ध्रुव वृद्धि है, इतना क्षेत्र जाने पर काल एक समय बढ़ता है, इतना क्षेत्र पर जाने पर काल एक समय पड़ता है, परंतु कहीं कहीं बहुत अधिक वृद्धि भी होगी क्षेत्र में। तो ये जो अभी हमने पढ़ा था आपको याद है, ये हमने पढ़ा था हाँ इसी पुस्तक में, पांचवी जो गाथा आई थी 24 पृष्ठ पर, वहां हमने ये देखा था। ये द्वितीय दंडक नहीं था, प्रथम दंडक का उत्कृष्ट काल और क्षेत्र था। निकाल के देखो आप, ये लिखा आवली के संख्यात्व भाग को जानने वाला क्षेत्र से अंगुल के संख्यात्व भाग को जानता है। 24 पृष्ठ निकालना नीचे के पैराग्राफ में तीसरी लाइन, इसी कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुल का संख्यात्व भाग और उत्कृष्ट काल आवली का संख्यात्व भाग है ना। पहले कांडक का ये उत्कृष्ट क्षेत्र और काल है। इस प्रकार सूत्र में कहा गया है, ये सूत्रों में ही वर्णन किया है काल और क्षेत्र के, जो अलग अलग 19 कांडक सूत्रों में ही तो बताए हैं। अब आगे की भी बात कहते हैं, काल से कुछ कम आवली को जानने वाला क्षेत्र से घनांगुल को जानता है। ये कौन सा है? ये द्वितीय कांडक है ना, अभी उसी बात पर, उसी पृष्ठ पर बात चल रही है, 24 पृष्ठ पर। द्वितीय कांडक की बात है ये, मिला आपको? देखो वहां क्षेत्र को पहले बताया, यहाँ काल को पहले बताया। जब क्षेत्र घनांगुल प्रमाण होता है तो काल कितना है? आवली में कुछ कम। फिर आगे क्या लिखते हैं? काल की अपेक्षा आवली को जानने वाला, ये जिस बात पर हमारी बहुत डिस्प्यूट चली थी ना, गोमटसार में ऐसा लिखा और यहाँ ऐसा लिखा है, पूर्ण आवली है कि पृथक्त्व आवली है, तो यहाँ पूर्ण आवली की बात करें। काल की अपेक्षा जो आवली प्रमाण काल को जानता है वो क्षेत्र से कितना जानता है? अंगुल पृथक्त्व। ये तीसरा कांडक है, यानी वो सूत्रों के यहाँ उद्धरण दे रहे हैं कि ये हम पहले ऑलरेडी ये जान चुके हैं, और उसमें क्षेत्र और काल का यही प्रपोर्शन उस स्टेज पर पाया जाता है। भले सामान्य से वृद्धि होती है कि इतना क्षेत्र के विकल्प बीत जाने पर काल में एक समय वृद्धि होती है, परंतु कहीं कहीं अधिक भी वृद्धि होती है, तो इसलिए ये बता रहे कांडक, फिर से दोबारा बता रहे। तीसरी लाइन, काल की अपेक्षा अर्धमास को जानने वाला क्षेत्र की अपेक्षा भरत क्षेत्र को जानता है, ये आठवां कांडक है। ये तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल बताया है ना, पहले हम क्रम से जान चुके हैं। ये आठवां कांडक है जो पृष्ठ 25 पर आया था, गाथा 7 नंबर में। फिर काल की अपेक्षा साधिक एक मास को जानने वाला क्षेत्र से जम्बूद्वीप को जानता है, ये कितवा कांडक है। आप उसमें 25 पृष्ठ पर कंफर्म करना, फिर लिखना। ये नौवा है। काल की अपेक्षा एक वर्ष को जानने वाला क्षेत्र से मनुष्य लोक को जानता है, ये दसवा है। इस प्रकार इत्यादि क्षेत्र नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि यानी यदि एकांततः ऐसा मानेंगे तो, शंकाकार ने जो शंका पूछी थी ना, क्योंकि लोक के असंख्यातवे भाग मात्र क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल में एक समय की वृद्धि स्वीकार की है, और लोक विरुद्ध युक्ति होती नहीं है क्योंकि वह युक्त्याभास रूप होगी। शंकाकार ने जो पूछा था, लोक का असंख्यात्व भाग इतनी वृद्धि होती है, और आचार्य ने कहा था वो तो अंगुल का असंख्यात्व भाग इतनी वृद्धि क्षेत्रों में विकल्प होते हैं तब काल में एक समय बढ़ता है, तो सूत्र से विरुद्ध युक्ति नहीं होती। ये जो तर्क किया है ना, वो सही तर्क नहीं है, कुतर्क या तर्काभास कहेंगे, यहाँ युक्त्याभास कहा। युक्ति कहो तर्क कहो एक ही बात। शंका, यदि यह घटित नहीं होता तो न हो, परंतु फिर उत्कृष्ट क्षेत्र और काल की उत्पत्ति कैसे संभव है। शंकाकार क्या कहता है, अभी आप कहते तो चलो हम मान भी लेते, तो फिर उत्कृष्ट क्षेत्र अलग और काल अलग, वो कुछ प्रोपोर्शन बैठता नहीं है, उसकी कैसी उत्पत्ति हो सकती है। उत्कृष्ट क्षेत्र तो लोक है और काल तो एक समय कम्पल्य है, ये कैसे घटित होता है, कैसे समझना उसको। उसका समाधान, वृद्धि के नियम का अभाव होने से उनकी उत्पत्ति घटित होती है। वृद्धि का नियम यानी निश्चित वृद्धि का अभाव, जैसे हमने द्रव्य के विकल्पों में देखा था, निश्चित संख्या से भाग देते चले गए, निश्चित यानी फिक्स ध्रुव संख्या, वैसे यहाँ जो वृद्धि है वो निश्चित यानी फिक्स वृद्धि नहीं है, उतनी ही वृद्धि होगी ऐसा नियम नहीं है, यानी ध्रुव वृद्धि नहीं है, समान वृद्धि नहीं होती जा रही है, कहीं ज्यादा है। प्रथमतः यानी शुरू में अंगुल के असंख्यातवे भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर काल में एक समय बढ़ता है, वह इस प्रकार है। आवली के संख्यात वे भाग में से जघन्य काल को कम कर देने पर शेष आवली के संख्यात्वे भाग मात्र काल वृद्धि होती है। हमने देखा था पहले दंडक में जघन्य और उत्कृष्ट, पहले दंडक का जघन्य और उत्कृष्ट उन्होंने बताया था, है ना। जघन्य में कितना देखा था हमने, आवली का असंख्यात्व भाग था, जघन्य काल कितना है, आवली का असंख्यात्व भाग। पहले दंडक का उत्कृष्ट काल आवली का संख्यात्व भाग, तो संख्यात्वे भाग में से असंख्यात्वा भाग कम किया तो संख्यात्वा भाग ही आया, इतनी काल में वृद्धि हुई, तो पहले दंडक में उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है, अभी हमने देखा था ना, जघन्य क्षेत्र अंगुल का असंख्यात्वा भाग था और उसमें और असंख्यात्वे भाग की वृद्धि हो गई, अभी हमने पढ़ा ना, तब जाके काल में एक समय बढ़ा था, तो उसको अभी जो हमने काल के भेद देखे, प्रथम दंडक के काल के भेद, पहले भी हमने क्या देखा था, गए पृष्ठ पर क्षेत्र के विकल्पों को काल के विकल्पों से भाग दिया था, है ना, क्षेत्र के विकल्प डिवाइडेड बाय काल के विकल्प, तभी हमको वृद्धि का प्रमाण आता है। यहाँ पहले दंडक में उतना कहना चाहते, प्रथमता है ने शुरू शुरू में, शुरू के पहले दंडक जो है प्रथम दंडक उसमें जघन्य और उत्कृष्ट हमको काल भी बताया और क्षेत्र भी बताया। निकालो पेज नंबर 24। देखो 19 कांडकों में से नीचे का पैराग्राफ, प्रथम कांडक में जघन्य क्षेत्र कितना है, घनांगुल का असंख्यात्व भाग और जघन्य काल आवली का असंख्यात्व भाग, उसी में उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुल का संख्यात्व भाग और उत्कृष्ट काल आवली का संख्यात्व भाग, बस इतना आपें पता है ना। अब पहले ही कांडक में हमको क्षेत्र के विकल्प को काल के विकल्पों से भाग देना है। अब यहाँ क्या लिखा है, पहले यहाँ काल के विकल्प बताए उन्होंने, वह इस प्रकार लिखा है ना पेज नंबर 32 पर नीचे से पांचवी लाइन क्या लिखे, आवली के संख्यात्व भाग में से जघन्य काल को कम कर देने पर, क्यों कम किया, काल के विकल्प निकालना था हमको, तो वो काल के विकल्प कितने आए, आवली के संख्यात्व भाग मात्र आए, उतनी काल वृद्धि होती है, बराबर है, काल में इतनी वृद्धि हुई, काल के विकल्प नहीं कहेंगे, काल में इतनी वृद्धि हुई, जैसे पहले 5 समय थे और बाद में 20 समय हो गए, वृद्धि कितनी हुई, 15 की हुई, विकल्प कितने, तो वो 5 को भी गिनना पड़ेगा, बढ़ोतरी कितनी हुई, इतना हमको निकालना है, तो उत्कृष्ट माइनस जघन्य ये काल की वृद्धि का प्रमाण आया। यहाँ केवल संख्या लिखी है, वो किसमें से क्या माइनस कर रहे हो पता नहीं चलता ना, तो उत्कृष्ट काल में से जघन्य काल हमने बाद किया, तो क्या आया, काल की वृद्धि का प्रमाण आया। आप वहां लिख के ये वाक्य का अर्थ क्या है, उत्कृष्ट काल माइनस जघन्य काल इज इक्वल टू काल की वृद्धि। अब इसको विरलित करना है ना, इससे भाग देना है क्षेत्र में वृद्धि जितनी हुई उसको, अपनी भाषा में सीखेंगे ना, इसको विरलित करेंगे और क्षेत्र में जितनी वृद्धि है उसको समखंड करके दे देंगे, वही रिजल्ट हमको क्षेत्र के वृद्धि को काल के वृद्धि से भाग देंगे तो वही रिजल्ट आने वाला है। तो कहते इसको विरलित कर, अब यहाँ हमको क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ उत्कृष्ट क्षेत्र में से जघन्य क्षेत्र को बाद करना है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, जघन्य अवधि क्षेत्र से कम अंगुल के संख्यात्व भाग मात्र अवधि की क्षेत्र वृद्धि को, ये क्षेत्र वृद्धि बता रहे, यानी उत्कृष्ट क्षेत्र माइनस जघन्य क्षेत्र इज इक्वल टू क्षेत्र की वृद्धि, बराबर है ना। जैसे ऊपर हमने आवली के संख्यात्व भाग में से आवली का असंख्यात्व भाग माइनस किया था तो उसका रिजल्ट आवली का संख्यात्व भाग आया था, वैसे यहां अंगुल लिया, अंगुल के संख्यात्व भाग में से अंगुल का, अभी यहां घनांगुल समझना, असंख्यात्व भाग माइनस किया तो फिर अंगुल का संख्यात्व भाग ही उसका रिजल्ट आया। तो समखंड कर देने पर प्रत्येक समय में अंगुल का असंख्यात्व भाग प्राप्त होता है, अपने काल में वृद्धि और क्षेत्र में वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि का प्रमाण था अंगुल का संख्यात्व भाग, यह इसको संख्यात की साइन कहते हैं, ये इस तरह से जो है ना, ये संख्यात की साइन है, जैसे मंडरू लिखते हैं ऐसा या टाइप का, अंगुल का संख्यात्व भाग एक क्षेत्र की वृद्धि है डिवाइडेड बाय आवली का संख्यात्व भाग काल की वृद्धि है, तो डिवाइडेड यानी उल्टा करके गुणा करेंगे, ये आवली का संख्यात्व भाग काल की वृद्धि, तो इसका रिजल्ट कितना आता है, देखो क्या बताया उन्होंने, अंगुल का असंख्यात्वा भाग प्राप्त होता है, ये गया अंगुल डिवाइडेड बाय आवली, आवली असंख्यात है, अंगुल का असंख्यात्वा भाग प्राप्त हुआ, बराबर है ना। अभी संख्यात का प्रोपोर्शन भले अलग अलग हो, कुछ भी हो, हमें तो साधारण स्थूल रूप से यहाँ समझना है। अंगुल को आवली से भी भाग देंगे तो क्या होगा, अंगुल का असंख्यात्वा भाग आएगा। तो यही बता दें अभी क्या हुआ यहाँ, यहाँ यदि अवस्थित क्षेत्र वृद्धि है, यानी यहाँ पर अवस्थित यानी फिक्स यानी ध्रुव क्षेत्र वृद्धि है, तो एक एक अंक के प्रति प्राप्त क्षेत्रों के बढ़ने पर काल में भी उसी उसी क्षेत्र का अधस्तन समय एक एक बढ़ाना चाहिए। यहाँ यदि फिक्स वृद्धि होती है तो, जैसे हमने देखा था ना, क्षेत्र में चार की वृद्धि होती है तब काल में एक समय बढ़ता है, यदि ऐसी ध्रुव उतनी की उतनी वृद्धि होती है तो ये प्रोपोर्शन रहेगा वहाँ पर। और यदि अनवस्थित वृद्धि है तो भी, कहीं ज़्यादा वृद्धि है और कहीं इतनी ही वृद्धि है, ऐसा अगर कहेंगे तो भी प्रथम विकल्प से लेकर अंगुल के असंख्यात भाग वृद्धि के असंख्यात विकल्प ले जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम अंगुल के असंख्यात भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर काल में एक समय बढ़ता है, ऐसा गुरु का उपदेश है। शुरू में स्टार्टिंग में अंगुल के असंख्यात भाग क्षेत्र के विकल्प बीत जाने पर काल में एक समय की वृद्धि होती है, ये शुरू में तो यही प्रोपोर्शन है और यही उपदेश है। बाद में क्षेत्र ज़्यादा बढ़ता है कहीं, उसको अध्रुव वृद्धि कही, शुरू में तो इतना बढ़ता है, बाद में बहुत बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा था ना यहाँ 15 मास हुए तो वहाँ तो भरत क्षेत्र हुआ, वैसे तो उस प्रोपोर्शन से तो असंख्यात योजन आना चाहिए था, परंतु वैसा नहीं हुआ, भरत क्षेत्र तो संख्यात योजन है, तो कहीं कम वृद्धि कहीं ज़्यादा वृद्धि, या काल का प्रोपोर्शन जो ऐसा लगता है ना शिष्य को, क्षेत्र की अपेक्षा भी विचार करो तो काल ज़्यादा आने वाला था, आना चाहिए था, काल की ओर से विचार करते हैं त्रैराशिक मानते हैं तो क्षेत्र कम ज़्यादा आना चाहिए था, छोटा आना चाहिए था। तो यहाँ कहते हैं पुनः ऊपरी अंगुल के असंख्यात भाग और उसके ही संख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र विकल्पों के बीतने पर काल में एक समय बढ़ता है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही प्रकारों से वृद्धि होने का कोई विरोध नहीं है। दोनों ही प्रकारों से यानी कहीं अंगुल का असंख्यात भाग है, कहीं उस प्रोपोर्शन का भी संख्यात भाग ही क्षेत्र में वृद्धि होती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है, अध्रुव वृद्धि भी होती है और ध्रुव वृद्धि भी होती है। इसलिए शंकाकार को जो शंका आई थी उतना ही त्रैराशिक मानकर ये ऐसा निकलना चाहिए तो वो सिद्ध नहीं होता, हाँ? तो वो भाव में तत्प्रायोगी असंख्या तो हमने भाव में लिया था, क्षेत्र में शुरू में तो इतनी ही वृद्धि होती है, बाद में कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है। देखो अब और बताते, जघन्य काल को कुछ कम आवली में से कम करके, कुछ कम आवली कहाँ लिखा था हमने, द्वितीय कांडक के लिए लिखा था, अब ये द्वितीय कांडक का प्रोपोर्शन बता रहे हैं। तो जघन्य काल को कुछ कम आवली में से कम करके, यानी वहाँ कितने अभी क्षेत्र के कितने विकल्प बीत गए हैं वो कैसे निकालेंगे, तो द्वितीय कांडक के क्षेत्र में से द्वितीय कांडक के काल में से, क्षेत्र में से नहीं काल में से, द्वितीय कांडक का क्षेत्र और काल कितना है जरा देख के बताओ, इसी पृष्ठ पर है ना लेफ्ट साइड में 32 पृष्ठ की पहली लाइन, कुछ कम आवली और क्षेत्र घनांगुल, पूरा घनांगुल, अब उसको यहाँ बताएंगे। जघन्य काल को कुछ कम आवली में से कम करके, यानी द्वितीय कांडक का ये काल है, उसमें से जघन्य काल कम किया तो काल में कितनी वृद्धि हुई है हमको निकला। द्वितीय कांडक के लिए काल कितना बढ़ा, कुछ कम आवली में से जघन्य काल को कम किया, ये काल की वृद्धि का प्रपोर्शन आया। शेष का विरलन कर, यानी वो भागहार में लिखना, काल की वृद्धि को हमने भागाकार में रखेंगे, और ऊपर किसको लिखना, क्षेत्र की वृद्धि को, तो क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है हम बिना पढ़े देखेंगे। द्वितीय कांडक का क्षेत्र कितना है, क्षेत्र द्वितीय कांडक का क्षेत्र घनांगुल, वह बताएंगे अभी। देखो विरलन कर जघन्य क्षेत्र से हीन घनांगुल, अभी ये थोड़ी थोड़ी बातें इसका अर्थ ख्याल में लेना है हमको, वो बातें घनांगुल है कि आवली है कि उसका असंख्या, वो भूल जाओ, ये यहाँ क्या बताना चाहते हैं, तो द्वितीय कांडक के लिए क्षेत्र की वृद्धि और काल की वृद्धि को बताना चाहते हैं। पहले में तो उन्होंने घटित करके दिखाया, पहले में क्या किया, जघन्य से उत्कृष्ट तक कितना बढ़ा उसको बताया, उसके अनुसार वो वृद्धि का प्रपोर्शन भी बता दिया। अभी दूसरे कांडक में वृद्धि कितनी है टोटल उसको बताएंगे। तो पहली लाइन में जो लिखा ना उन्होंने, नहीं का देखो द्रव्य की यहाँ कोई बात नहीं है, यहाँ द्रव्य क्षेत्र और काल की ही बात चल रही है, यहाँ द्रव्य की बात लिखा ही नहीं, ना द्रव्य की ना भाव की, क्षेत्र और काल में ही बात चल रही है अपने। देखो जघन्य काल को कुछ कम आवली, कुछ कम आवली क्या है, द्वितीय कांडक का काल है, उत्कृष्ट ही बताते सब जगह। तो ये द्वितीय कांडक की अभी हमने क्या समझना है, द्वितीय कांडक की काल वृद्धि है ना, द्वितीय कांडक में काल की वृद्धि कितनी हुई है वो हमको मिला। अभी नीचे जो लिखा है जघन्य क्षेत्र से हीन घनांगुल, वो क्या बताता है, द्वितीय कांडक में क्षेत्र की वृद्धि, बराबर, द्वितीय कांडक की क्षेत्र की वृद्धि। अभी उसमें समखंड करके प्रत्येक समय के ऊपर देकर दूसरी भाषा में क्षेत्र की वृद्धि डिवाइडेड बाय काल की वृद्धि, वही आया ना, क्योंकि काल में जितनी वृद्धि है उसको विरलन कर दो और क्षेत्र की वृद्धि को समखंड करके दे दो। अपनी भाषा में क्षेत्र की वृद्धि को काल की वृद्धि से भाग दे दो। फिर अवस्थित व अनवस्थित वृद्धि के विकल्पों में अंगुल के असंख्यात्वे भाग व संख्यात्वे भाग मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीतने पर काल में एक समय बढ़ता है, ऐसी पूर्व के समान प्ररूपणा करनी चाहिए। क्या कहते हैं, अब यहाँ उन्होंने क्षेत्र के वृद्धि को काल की वृद्धि से भाग दिया, तो उसमें कहीं कहीं अवस्थित वृद्धि होती है और कहीं कहीं अनवस्थित होती है। अवस्थित वृद्धि कितनी होती है, अंगुल का असंख्यात्वा भाग होती है, और अनवस्थित वृद्धि कितनी होती है, तो अंगुल का संख्यात्वा भाग होती है। अधिक क्षेत्र के विकल्प बीतने पर वहाँ एक समय बढ़ता है, पहले अंगुल का असंख्यात्वा भाग क्षेत्र विकल्पों के बीतने पर एक एक समय बढ़ता था, अभी अंगुल के संख्यात्वे भाग यानी वो संख्या बढ़ी आई ना, तो क्षेत्र उतना बढ़ने पर काल एक समय बढ़ेगा। ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट लगता है, क्षेत्र तो बढ़ते बढ़ते लोक जितना हुआ और काल बढ़ते बढ़ते पल्ले जितना ही रह गया, ऐसा क्यों, तो कहीं कहीं क्षेत्र में अधिक वृद्धि होती है तब जाके काल एक समय बढ़ता है, इसको कहते हैं अवस्थित वृद्धि और अनवस्थित वृद्धि। ऐसे पूर्व के समान प्ररूपणा करनी चाहिए। इस प्रकार जाकर यानी इस प्रकार यानी अभी हमने जो कांडक देखे हैं, प्रत्येक कांडक में क्षेत्र की वृद्धि डिवाइडेड बाय काल की वृद्धि करो, तो वहां जो कुछ प्रोपोर्शन आएगा उस प्रोपोर्शन में वहां वो क्षेत्र के विकल्प बढ़ गए हैं, ऐसा समझना। स्टार्टिंग कैसी थी, स्टार्टिंग वो अंगुल का असंख्यात्वे भाग इतने जाने पर एक समय बढ़ा था, वो स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें भी कहीं कहीं संख्यात विभाग हुए थे, मगर उसका ज़्यादा नहीं था। अब जो जो आगे वाले जो है, अभी हमने इतने 19 कांडक देखे, जो भरत क्षेत्र देखा और वहाँ उसके लिए 15 दिन देखे, तो वो 15 दिन है, 15 दिन माइनस जघन्य काल, ये भागाकार भागहार में रखना, और ऊपर भाग देने में क्या, भरत क्षेत्र का जो पूरा क्षेत्रफल है, अभी उसका क्षेत्रफल निकालना, ये ऐसे पूरे जो डायमेंशन है ना उसका, जो कुछ धनुषाकार है उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसमें से अंगुल का असंख्यात भाग माइनस करना, तो क्षेत्र की वृद्धि का प्रमाण आया। वो 15 दिन में से आवली का असंख्यात भाग माइनस करना, ये काल की वृद्धि का प्रमाण आया, उसको उससे भाग देना, तो वो हमें वृद्धि का जनरल प्रोपोर्शन मिलेगा। तो कहीं पर असंख्यात भाग है, कहीं संख्यात भाग, जो कुछ यथा योग्य वृद्धि है, कहीं कहीं तो घनांगुल इतनी भी संख्यात अंगुल भी वृद्धि हुई होगी। अभी अंगुल का असंख्यात भाग हो या संख्यात भाग, ऐसी भी नहीं होगी, संख्यात गुना भी हो सकती है, इतनी यथा योग्य वृद्धि होती है। तो वृद्धि जो है, क्षेत्र की वृद्धि जो है, वो अवस्थित नहीं है, कहीं अवस्थित होती कहीं अनवस्थित होती है, स्टार्टिंग पॉइंट में वो हुई थी, बाद में यथा योग्य जहाँ जो कुछ है वो होती है। इसलिए दोनों का प्रोपोर्शनेटली नहीं वो बढ़ रहे हैं, कितना क्षेत्र बढ़ा, लोग बढ़ा तो काल भी ज़्यादा आना चाहिए था, परंतु वो तो है ही नहीं है, काल की अपेक्षा बढ़ेंगे तो क्षेत्र इतना नहीं होना चाहिए था, कुछ थोड़े घनांगुल होने चाहिए थे। ये जो डिस्प्यूट है, ये डिस्प्रोपोर्शन है, ये क्यों है, क्योंकि वृद्धि समान रूप से इतना ही बढ़ने पर एक समय बढ़ता है, ऐसा समान रूप से नहीं है, स्टार्टिंग में वो प्रोपोर्शन था, बाद में वो अलग अलग प्रोपोर्शन में बढ़ता है। कहते इस प्रकार जाकर यानी इस प्रकार गणित करते जाओ आप, अनुत्तर विमानवासी देव, अभी यहाँ निकाला, ये हमने पहले पढ़ा था, 25 पेज पर आई थी ना गाथा, ये तो 26 पेज पर है, अनुत्तर से देवासु, वो 12 नंबर की गाथा, पेज 26 पर गाथा नंबर 12, देखो गाथा 12, देखो क्या लिखा है, सवम च लोयन आली पसंति अनुत्तरेषु जय देवा। अनुत्तर विमानों का जो वहाँ के जो वासी देव है, उनका क्षेत्र कितना है, लोकनाली, सखे ते सखे में रू अगदम अनंत भागो दू, परंतु उसका काल कितना है, कहाँ तक देखते उतने ही बात की उन्होंने, देखो हम पढ़ेंगे यहाँ शायद लिखा होगा, इस प्रकार जाकर अनुत्तर विमानवासी देव, हाँ लिखा यहाँ, काल की अपेक्षा पल्योपम के असंख्यातवे भाग और क्षेत्र की अपेक्षा समस्त लोक नाली को जानते हैं। काल उसका पल्ले के असंख्यात विभाग है, अतएव अब यही फॉर्मूला लगाना है, तो अनुत्तर विमान वासियों में काल की वृद्धि कितनी हुई, तो टोटल अभी कितना जानते हैं, पल्ले के असंख्यात विभाग काल तक को जानते हैं आगे पीछे, उसमें से जघन्य काल माइनस करेंगे, तो क्या लिखा है, अतएव जघन्य काल से रहित पल्योपम के असंख्यातवे भाग का विरलन कर, यानी ये भागाकार में आ गया, भागहार जिसको कहते हैं। फिर क्षेत्र की वृद्धि कितनी हुई है, अभी लोक नाली का जो क्षेत्रफल है उसमें से जघन्य क्षेत्र कितना याद है ना, अंगुल का असंख्यात भाग, तो जघन्य क्षेत्र से हीन जघन्य आदि अध्वान को समखंड कर देने पर, ये कुछ रह गया यहाँ ऊपर क्या लिखा है, एवं मैं पढ़ती हूँ ऊपर का नीचे से पांचवी लाइन में, एवं गंतुण अनुत्तर विमान वासीय देवा कालदो पलिदोवमस असंकेज्यदि भागम खेतदो सवलोकनालिम जानंती। जहन्न कालुण पलिदोवमस असंकेज्यदि भागम विरलीय, विरलन किसका करना है, अभी हमने जो पढ़ा था जघन्य काल से रहित पल्योपम के असंख्यातवे भाग का विरलन करना, क्योंकि ये काल की वृद्धि का प्रमाण है। वीरलिय जहन्य खेतेन जहन्नादि अद्धानम समखंडम करिय दिन्ने, जघन्य क्षेत्र से हीन कुछ रह गया है, जघन्य क्षेत्र से हीन लोकनाली को रखना चाहिए था। देखो जैसे अभी हम कंपेयर करते ऊपर जो हमने पहले खंड पहले कांडक में क्या देखा था, इसी पैराग्राफ में दूसरी लाइन में क्या लिखा, जघन्य क्षेत्र से हीन घनांगुल को, बराबर विनोद भाई कुछ ख्याल में आता है, क्षेत्र की वृद्धि निकालनी है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, जघन्य क्षेत्र से हीन लोकनाली को समखंड करके, यहाँ जघन्य आदि अध्वान को लिखा है, अध्वान यानी काल, जघन्य क्षेत्र से हीन, अभी पेंसिल से करना जो कुछ करना है, लोकनाली का क्षेत्रफल निकालना चाहिए, क्षेत्र कितना बड़ा है, देखो यहाँ जो अनुत्तर विमानवासी वो कितने क्षेत्र को जानते हैं, तो जघन्य क्षेत्र को उत्कृष्ट क्षेत्र वहां के क्षेत्र से कम करना चाहिए, तो जघन्य क्षेत्र से हीन लोकनाली, लोकनाली को वहां उसके बदले यहां जघन्य आदि अध्वान को लिखा है, जघन्य क्षेत्र से हीन लोकनाली को, समखंड कर देने पर, ये ख्याल में आता है, यानी क्षेत्र की वृद्धि को काल की वृद्धि से भाग देना है, विरलित देखो ऐसा मैं पढ़ती हूँ अभी, जघन्य क्षेत्र से हीन लोकनाली को समखंड कर देने पर, नहीं लोकनाली में से जघन्य क्षेत्र माइनस करना है, मैं फिर पढ़ के दिखाती हूँ आपको, ये मेरी मति है, ये जघन्य आदि अध्वान क्यों लिखा है उसमें पता नहीं, जघन्य आदि अध्वान अध्वान तो काल की बात है, यहाँ तो हमको क्षेत्र समझना है, मैं फिर इसको पढ़ती हूँ नीचे से चौथी लाइन से जो ठीक है वहां से पढ़ती हूँ, ऊपर वैसा ही लिखा है, जघन्य क्षेत्र से हीन घनांगुल को समखंड कर देने पर, क्योंकि वहां घनांगुल को जानता था क्षेत्र, अब यहाँ लोकनाली को जानता है, वही फॉर्मूला यहाँ फिट करना है, तो क्या लिखेंगे, देखो नीचे से चौथी लाइन जो ठीक है उसको पढ़ती हूँ और नीचे से तीसरे में हमको करेक्शन करना है, अतएव जघन्य काल से रहित पल्योपम के असंख्यातवे भाग का विरलन कर, ये विरलन किसका करना, काल की वृद्धि का, और उसमें समखंड किसके देने हैं, क्षेत्र की वृद्धि के, जघन्य क्षेत्र से हीन लोकनाली को, जघन्य आदि अध्वान के उसका उसको तो पेंसिल से करो जो कुछ करना है, उसके बदले लोकनाली को लिखना, ऊपर भी वैसा ही लिखा है उन्होंने, जहन्न खेते न जहन्नादि अध्वानम, हाँ उसी का ट्रांसलेशन किया है, ऊपर क्या लिखा था, उसी के ऊपर सव लोग नालिम जानंती लिखा है ना, तो जहन्न खेते न हीन लिखा ही नहीं, जहन्न खेते खेते न हीनम, ऐसे शब्द पूरे और आगे चाहिए। लोक नाली में ऐसा कुछ चाहिए वहाँ, हाँ देखो देखो, अभी हम जो पढ़ा है उसको पढ़ते हैं। समखंड कर देने पर हमें इतना ही समझना है कि क्षेत्र में जितनी वृद्धि हुई है उसको काल की वृद्धि से भाग देना, प्रत्येक रूप के प्रति, यानी संख्या कितनी आएगी उसकी, असंख्यात जगत प्रतर मात्र लोक का असंख्यात्व भाग प्राप्त होता है। आपका प्रश्न था यह जगत प्रतर कैसा आ गया, है ना? वृद्धि कितनी हुई, लोक नाली कितनी है, 14, तो 14 घन राजू है, तो 14 घन राजू, बराबर है, 14 घन राजू ये लोक नाली है। अभी उसमें से जो कुछ यथा योग्य हमने माइनस किया जघन्य, उसको डिवाइड किससे किया, हाँ तो पल्य का असंख्यात भाग, उसमें से कुछ कम किया था थोड़ा, तो पल्य के असंख्यात भाग से 14 उसको डिवाइड किया तो कितना आया वो, ये छोटी होती है ना, बहुत छोटी है, तो ये बढ़कर, ये बढ़ जाएगी ना ऊपर की, तो बढ़कर लोग जितनी नहीं होगी, प्रतर में कुछ असंख्यात से गुणा करना पड़ेगा, असंख्यात जगत प्रतर हो जाएगी। यानी लोक का असंख्यात भाग वो कितना है, असंख्यात भाग तो जगत प्रतर से बड़ा है, असंख्यात गुणा है। यहाँ एक रूप धरित मात्र क्षेत्र विकल्पों के बीत जाने पर काल में एक समय बढ़ता है ऐसा नहीं कहना चाहिए। पहले हमने क्या देखा था, वो जितना भागाकार आया उतने विकल्पों के बीत जाने पर काल में एक एक समय बढ़ता है, परंतु ऐसा यहाँ कथन नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार अधस्तन क्षेत्र और काल के अभाव का प्रसंग आवेगा, यानी वो उसी प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है, इसलिए घनांगुल के असंख्यातवे भाग कहीं पर घनांगुल के संख्यातवे भाग, ये पहले यहाँ कॉमा देना पहले लाइन में, यानी क्षेत्र की वृद्धि कितनी कितनी होती है, तो शुरू में क्या बताया था, घनांगुल का असंख्यातवा भाग वृद्धि होती है, तो कहीं पर घनांगुल का असंख्यातवा भाग, कहीं पर घनांगुल के संख्यातवे भाग, कहीं पर घनांगुल, कहीं पर घनांगुल के वर्ग, इस प्रकार जाकर कहीं पर जगत श्रेणी कितनी वृद्धि होगी, देखो इतनी वृद्धि होने पर काल एक समय बढ़ेगा, खाली क्षेत्र की वृद्धि फास्ट हो रही, कहीं पर जगत श्रेणी, कहीं पर जगत प्रतर, और कहीं पर असंख्यात जगत प्रतरों के बीतने पर एक समय बढ़ता है ऐसा कहना चाहिए। यानी एक समय बढ़ने के लिए क्षेत्र के विकल्प कितने बढ़ेंगे, तो असंख्यात जगत प्रतर इतने एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए, तब जाके काल में एक समय की वृद्धि होगी ऐसा कहना चाहिए। इसलिए उत्कृष्ट क्षेत्र और काल की उत्पत्ति में कोई विरोध नहीं है यह सिद्ध हुआ, इसलिए वो उत्कृष्ट क्षेत्र तो लोक तक पहुंच गया देशावधि का, और काल तो पल्ले के एक समय कम इतना ही रह गया। यदि वही फिक्स अगर वृद्धि होती प्रोपोर्शनेट तो इतना क्षेत्र नहीं बढ़ता। तो यहाँ क्षेत्र तो कहीं कहीं बहुत फास्ट, कहीं तो अंगुल का संख्यात वावा, कहीं संख्यात वावा, कहीं संख्यात घनांगुल, कहीं जगत श्रेणी, जगत प्रतर इतना भी बढ़ा कहीं कहीं। तो क्षेत्र बहुत फास्ट बढ़ता गया और काल तो एक एक समय से बढ़ा। इस प्रकार तब तक ले जाना चाहिए, अस निकाल देना, इस प्रकार चाहिए, इस प्रकार तब तक ले जाना चाहिए, तब तक ले जाना चाहिए ने? इस प्रकार की वृद्धि तब तक जानना चाहिए जब तक द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की द्विचरम समान वृद्धि नहीं प्राप्त होती। द्विचरम का अर्थ होता है लास्ट बट वन, उपांत्य, अंत से दूसरी। और समान वृद्धि किसके कहना हुआ अभी कहेंगे। देखो शंका, द्विचरम समान वृद्धि किसे कहते हैं? समान वृद्धि का अर्थ होता है एक साथ सबकी वृद्धि होती है, उसको समान वृद्धि कहा। हमने देखा था ना, चार बार द्रव्य की वृद्धि होती है तो क्षेत्र की एक बार होती है, तो सोलहवें बार द्रव्य की वृद्धि होगी ना, सोलह से सत्रह में जाएगी तो क्षेत्र भी वो चार से पांचवें में चला जाएगा, मतलब काल में भी एक समय की वृद्धि होगी और भाव तो बढ़ता ही द्रव्य के साथ। तो ये सबकी समान वृद्धि हुई, एक साथ सबकी, एक साथ सबकी कब होगी? जब जब काल की वृद्धि होगी तब तब ही होगी ना उसकी समान वृद्धि, नहीं तो ऑप्शनल है, कभी होती है कभी नहीं होती है। काल की भी वृद्धि चाहिए तो काल की अपेक्षा हम कहेंगे तब तक तो सभी की होती ही है। तो ये द्विचरम लास्ट बट वन, देखो जिस स्थान में, ये शंका करने पूछा था द्विचरम समान वृद्धि किसे कहते हैं, जिस स्थान में चारों की युगपत वृद्धि होती है उसकी समान वृद्धि ऐसी संज्ञा है, उसमें चरम समान वृद्धि को छोड़कर उससे नीचे की वृद्धि द्विचरम समान वृद्धि है। देखो अंतिम समय जो है पल्ले में एक समय कम वाला जो है अंतिम समय, उतना मैक्सिमम काल है, उसके पहले वाला दो समय कम वाला है वो तो वृद्धि का अंतिम, उसके बाद वो एक समय बढ़ गया था ना, तो वो वाला जो है वो जब तीन समय कम में से दो समय कम तक आ गया तब क्षेत्र भी बढ़ाता द्रव्य भी बढ़ाता भाव भी जो कुछ उसमें सब में समान वृद्धि हुई थी, वो वाला समय लेना है आप। उतना अध्वान, अध्वान ने काल जाकर वहां जो कुछ भी भेद है उसे कहते हैं, वहां द्विचरम समान वृद्धि से ऊपर कितने काल विकल्प हैं? बाद में एक ही बार बढ़ेगा ना काल, द्विचरम समान वृद्धि के बाद काल के कितने विकल्प शेष रहे? अभी एक समय वाला ही रह गया, उसमें क्षेत्र की बढ़ोत हो गई और द्रव्य की उससे भी ज्यादा हो गए, एक समय रूप एक विकल्प। किंतु क्षेत्र विकल्प बहुत सारे होंगे, कितने हो सकते? कुछ भी हो सकते क्योंकि उसमें तो अध्रुव है, तो कितने हो सकते? असंख्यात श्रेणी मात्र अथवा संख्यात श्रेणी मात्र, श्रेणी यानी जगत श्रेणी, अथवा जगत श्रेणी मात्र अथवा श्रेणी के प्रथम वर्ग मूल मात्र अथवा द्वितीय वर्ग मूल मात्र अथवा घनांगुल मात्र अथवा घनांगुल के संख्यात्वे भाग मात्र अथवा घनांगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र क्या होते हैं या नहीं, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं कि वे अंगुल के असंख्यात्वे भाग मात्र ही होते हैं, कारण कि ऐसा आचार्य परंपरागत उपदेश है। जैसे हम स्टार्टिंग में घनांगुल के असंख्यात्वे भाग इतने ही क्षेत्र के विकल्प बीत जाने पर एक समय बढ़ता ऐसा देखा था, तो द्विचरम समय से चरम समय में आ गया तो वहां भी वही प्रोपोर्शन है कि अंगुल के असंख्यात्वे भाग इतने ही क्षेत्र की वृद्धि हुई और वो जाकर वृद्धि हुई तो कितनी हुई? तो लोक जितनी हो गई, पूरा लोक हुआ ना वहां पर। अभी हम रुकेंगे, बाकी बात हम कल करेंगे, यहाँ ये इसको फिर पढ़ेंगे, पढ़कर आगे बढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान तेस सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा बेन।